सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धे वियुद्धसयले अज्जत्थबहित्थबन्धनं मुके भक्तिये अहं नमिं पुनो पुनो बंधनम ओच्छम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 14वीं पुस्तक जो पंचम वर्गणाखंड, उसमें बंधन अनुयोग द्वार की चर्चा करते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 193 पर आ गए। 193, हाँ 192 से दोबारा लेते हैं। अब अपना विषय चल रहा है अवहार काल का, और उसमें भी प्रदेशार्थ तक की अपेक्षा अवहार काल। अवहार का अर्थ होता है भागहार, यानी ऐसे कौन सी संख्या से भाग देंगे तो उसको काल में उसको गिनते हैं, भागहार को काल में गिनते हैं। तो कितने काल से अपहृत होता है, ऐसी उसकी भाषा है। यहाँ 192 पृष्ठ से शुरू से लेते हैं, प्रदेशार्थ की अपेक्षा अवहार काल का कथन करने पर। कल हमने द्रव्यार्थता की अपेक्षा देखा था, क्योंकि अवहार दो प्रकार का होता है, द्रव्यार्थता का और प्रदेशार्थता का, ऐसी कल बात आई थी। द्रव्यार्थता का अवहार का अर्थ क्या है? द्रव्यार्थता किसे कहते हैं? नंबर ऑफ वर्गणाएं, तो टोटल वर्गणाओं को उसका भाग देंगे तो वो जो भागहार आएगा उसी को अवहार कहा है। देखो 190 पृष्ठ पर देखना, वहां लिखा है ना, अवहार दो प्रकार का है, पांचवी लाइन में, द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता। ये किसकी द्रव्यार्थता प्रदेशार्थता की बात चल रही है? अपना विषय अभी अशोक भाई आज आए ना, यहां जो 23 वर्गणा है पुद्गल की, उस संबंधी ये प्रकरण चल रहा है। तो 23 वर्गणा में जो एक प्रदेशी वर्गणा है, द्विप्रदेशी है, त्रिप्रदेशी है, चतुर्प्रदेशी है, एक एक प्रदेशी बढ़ते हुए वर्गणाएं पाई जाती हैं। तो एक प्रदेशी में तो एक ही वर्गणा है, परंतु संख्यात प्रदेशी वर्गणा में द्विप्रदेशी से लेकर उत्कृष्ट संख्यात तक की वर्गणाएं हैं, एक 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 एक, फिर भी सबको मिलकर नाम दिया है संख्यात अनुवर्गणा। तो उसकी वर्गणा शलाका यानी 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे उत्कृष्ट संख्यात तक कितने हो गई? तो उत्कृष्ट संख्यात -1, इतनी उसकी टोटल वर्गणाएं होगी, यानी वर्गणा शलाका होगी। परंतु ऐसी द्विप्रदेशी वर्गणाएं इस विश्व में कितनी है? तो अनंत है। पहले एक प्रदेशी कितनी है? तो अनंत है। द्विप्रदेशी वे भी अनंत है, परंतु एक प्रदेशी वाले अनंत से थोड़ा कम है। तीन प्रदेशी उससे थोड़ा कम है, वे भी अनंत है। इस तरह से हमने उसकी द्रव्यार्थता देखी थी, यानी वर्गणाओं की संख्या को द्रव्यार्थता कहा था। तो संख्यात अनु द्विप्रदेशी की कितनी होती है? अभी यहाँ क्या बता रहे? अवहार काल, वहां तो संख्या निकाली थी, द्रव्यार्थता अकेली बताते थे, तो वहां उसकी द्रव्यार्थता कितनी है तो उसके लिए वो अनंत है या कुछ है वो बताया था। अब अवहार काल में क्या लेना है? वो संख्या, कौन से संख्या का भागहार देने पर वो संख्या आती है, उसको अवहार काल कहते हैं। यहां से फिर दोबारा लेते 190 पेज से। अवहार दो प्रकार का है, द्रव्यार्थता प्रदेशार्थता। कल हमने जो पढ़ा था ना उसको रिपीट कर रहे हैं। उनमें से द्रव्यार्थता की अपेक्षा परमाणु वर्गणा के प्रमाण से सब वर्गणाओं का द्रव्य कितने काल द्वारा अपहृत होता है, यानी सभी वर्गणाओं की टोटल नंबर ऑफ द्रव्य, पुद्गल परमाणु जितने एग्जिस्टिंग है, उसको परमाणु वर्गणा वाले अनंत का भाग देंगे। जो संख्या आएगी उसको कहेंगे इतने काल के द्वारा अपहृत होता है। तो कहते हैं असंख्यात लोक मात्र डेढ़ गुणहानि स्थानांतर काल के द्वारा अपहृत होता है। एक गुणहानि किसे कहना है? तो जहाँ परमाणु हमने देखा था, एक प्रदेशी वर्गणाएं अनंत है, द्विप्रदेशी थोड़ी कम है, तीन प्रदेशी थोड़ी कम है, चार प्रदेशी और कम है, ऐसे कम होते होते मूल से आधे हो जाते हैं, तो उसको कहेंगे एक गुणहानि। तो ये एक गुणहानि कितनी लंबी है, कितने स्थान जाने पर होती है? तो कहते हैं असंख्यात लोक। तो एक गुणहानि का प्रमाण असंख्यात लोक है, और डेढ़ गुणहानि का उससे डेढ़ गुना। तो यहाँ कहते हैं, हाँ सभी परमा द्रव्य, सब वर्गणाओं का द्रव्य, द्रव्य ने वर्गणाओं की संख्या लेना, परमाणुओं की संख्या नहीं, हाँ स्कंदों की यानी वर्गणाओं की संख्या। जैसे हम एक प्रदेशी वर्गणाएं अनंत है, द्विप्रदेशी उससे यानी थोड़े कम अनंत ही है, तीन प्रदेशी उससे थोड़े कम फिर भी अनंत है। हमने देखा था ना कि ध्रुव स्कंद वर्गणा तक सभी एक एक वाली जो है वो सारी अनंत वर्गणाएं होती है, और आगे भी जो यथायोग्य होते हैं। हाँ महास्कंद तक, महास्कंद तक, हाँ महास्कंद एक पकड़ना। जो हमने सचित्त वर्गणाएं देखी थी वो असंख्यात लोक असंख्यात लोक थी। तो जो कुछ जो जहाँ जितनी संख्याएं हैं उन सबकी टोटल करेंगे, उस टोटल संख्या को कौन से भागहार से भाग देने पर परमाणु वाला अनंत आता है, उसको कहते हैं अवहार। तो उसको कहेंगे वो परमाणु द्रव्य वर्गणा जो है अणुवर्गणा, उसका वो अवहार काल है। फिर पूछेंगे द्विप्रदेशी वाले जो अनंत है उसका अवहार काल कितना है? तो कौन सी संख्या को टोटल वर्गणाओं को भाग देंगे तो द्विप्रदेशी वर्गणाओं वाला अनंत आएगा, उसको कहेंगे वो द्रव्यार्थता की अपेक्षा उसका अवहार काल। अब हम पढ़ते फिर देखो, अवहार दो प्रकार का है, द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता। उनमें से द्रव्यार्थता की अपेक्षा परमाणु वर्गणा के प्रमाण से सब वर्गणाओं का द्रव्य कितने काल द्वारा अपहृत होता है, ये इसकी भाषा है। हाँ यानी हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्गणाएं डिवाइडेड बाय परमाणु द्रव्य वर्गणा, परमाणु की वर्गणा, तो हमें अवहार काल मिलेगा। जब अवहार काल मिलेगा तो टोटल वर्गणाओं को अवहार काल से भाग देंगे तो हमें परमाणु वाले वर्गणा आएंगे। एक ही बात है ना, जैसे हमें 100 है मान लेते टोटल, और इसकी संख्या है 20, तो 100 को 20 से भाग देंगे 5 आएंगे, तो 5 अवहार काल होगा। तो उस अवहार काल से 100 को भाग देंगे तो 20 संख्या आएगी। तो ये कौन, उसका अवहार काल कितना है? असंख्यात लोक मात्र डेढ़ गुणहानि स्थानांतर काल के द्वारा अपहृत होता है। एक गुणहानि भी असंख्यात लोक वाली है, क्योंकि असंख्यात लोक एक गुणहानि है, डेढ़ गुणहानि उससे डेढ़ गुना है, उसको भी असंख्यात लोक गुणा करना, और उस संख्या से टोटल वर्गणाओं को भाग देंगे तो जो अनंत संख्या आएगी वो परमाणु द्रव्य वर्गणाएं हैं। यथा द्वितीय आदि सब गुणहानियों को प्रथम गुणहानि के प्रमाण से करने पर वे सब प्रथम गुणहानि प्रमाण होती है। क्या कहना चाहते हैं? पहली गुणहानि इतनी बड़ी है, सभी गुणहानियां समान नहीं है, हमने देखी थी अलग अलग है उसका अधवान, और आधा आधा पहले नीचे वाले तो आधे आधे होते गए थे और ऊपर कुछ अलग प्रमाण था उसका। तो सब गुणहानि दो से लेकर ऊपर के सभी की टोटल करेंगे तो पहले गुणहानि समान होती। यहां ऐसा कहते देखो, द्वितीय आदि यानी दूसरे से लेकर सब गुणहानियों को प्रथम गुणहानि के प्रमाण से करने पर, यानी उनकी कंपैरिजन पहले गुणहानि से करेंगे तो, हाँ यानी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इन सब की टोटल करेंगे और उसका प्रमाण पहले से कंपेयर करेंगे तो वे सब प्रथम गुणहानि प्रमाण होती है। प्रथम गुणहानि की जितनी वैल्यू है उतनी बाकी सबकी मिलकर हो जाती है, यानी उतने वर्गणाओं का प्रमाण। यहाँ द्रव्यार्थता चल रही है ना, परमाणु की बात अलग होगी। परमाणु की बात हम प्रदेशार्थता में लेंगे, यह नंबर ऑफ वर्गणाएं की बात चल रही है। अकेले देखो, हाँ स्थानांतर काल है ना, स्थानांतर उसके स्थान लेना, उसमें लंबाई लेनी, अध्वान लेना उसका। हाँ असंख्यात लोक प्रमाण है। हाँ बराबर है, क्योंकि आगे की गुनाह नहीं है, ऊपर ऊपर के स्थान जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। मैक्सिमम कहाँ है? अनुवर्गणा में है, फिर वहां से थोड़े कम होते चले जाएंगे। तो टोटल वर्गणाओं का प्रमाण पहले वर्गणा, पहले गुणाने में मैक्सिमम है, बाकी सबके मिलकर भी उतने हैं। देखो पुनः प्रथम गुणहानी के द्रव्य को, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्गणाएं, पहले गुणहानी की टोटल नंबर ऑफ वर्गणाएं परमाणु वर्गणा के प्रमाण से करने पर, यानी उसको हम परमाणु वर्गणा से डिवाइड करेंगे तो परमाणु वर्गणा का 3/4 भाग प्रमाण विस्तार वाला और 1 गुणहानि प्रमाण आयाम वाला क्षेत्र होता है। परमाणु वर्गणा हम मान लेते अ, तो टोटल जो गुणहानि जो है उसका द्रव्य कितना होगा? परमाणु द्रव्य वर्गणा के प्रमाण से करने पर कितना होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ जो वर्गणाएं हैं उसको अ से भाग देंगे। प्रमाण से करना है उसके कंपैरिजन में, वो उसका एक यूनिट बनाना, तो ऐसे कितने यूनिट बनेंगे उसके? 3/4 भाग प्रमाण विस्तार वाला और 1 गुणहानि प्रमाण आयाम वाला क्षेत्र होता है, यानी क्षेत्र में वो नापेंगे। यहाँ 3/4 आया और यहाँ 1 गुणहानि, ऐसा उसका क्षेत्र नापेंगे हम, और इसको मल्टीप्लाइड बाय पहले जो द्रव अनुवर्गणा है अ, हाँ तो उससे गुणा करेंगे तो टोटल द्रव्य आएगा। हम प्रथम गुणहानि का टोटल द्रव्य कितना है? असंख्यात लोक को खाली नहीं, सभी वर्गणाएं। देखो जैसे पहले स्थान पर अ वर्गणा थी और फिर द्वि अनुवर्गणा, द्वि प्रदेशी वर्गणा कितनी है? अ माइनस समथिंग, ये सबकी टोटल कितनी हो जाएगी? उसको निकालना है, टोटल निकालना है। हाँ क्योंकि पहली गुणहानि कहाँ तक चली जाती है? हमने देखा था असंख्यात प्रदेशी तक चली जाती है, पहली गुणहानि असंख्यात प्रदेशी वर्गणा तक चली जाती है। तो वहां की सब मिलकर ये वर्गणाएं कितनी है? अ के कंपेरिजन में कितनी हो गई? तो संख्यात अनुवर्गणा तो संख्यात गुणा हो जाती है, इस तरह से ये टोटल कितनी होगी? तो कहते अ को 3/4 करना और 1 गुणहानि से मल्टीप्लाई करना। अगर हम उसमें से चय नहीं माइनस करेंगे तो जितनी गुणहानि है उतने अ हो गए। अभी वो सारा चय धन माइनस करना है, इसलिए अ को 3/4 बना दिया। तो इतना टोटल द्रव्य है पहले गुणहानि का। हाँ अभी आगे ये क्षेत्र की अपेक्षा ही समझाएंगे। हाँ चयधन पूरा 1 गुणहानि तक चयधन सब 1/4 हो गया। पूरा पढ़ेंगे ना फिर, और कल से तो थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है। हाँ कल क्या है, बहुत सैचुरेट हो गया ना, विषय बहुत लंबा चला ना, तो फिर वो समझ में नहीं आता वो क्या पढ़ रहे, ऐसा हो जाता है। देखो फिर आगे पुनः द्वितीय आदि गुणहानियों के द्रव्य को भी, अभी गुणहानि के द्रव्य की बात चल रही है। पहले गुणहानि का द्रव्य इतना है, कितना है पूरा कि 1 गुणहानि मल्टीप्लाइड बाय 3/4 अ, बराबर है। द्वितीय आदि गुणहानियों के द्रव्य को भी परमाणु वर्गणा के प्रमाण से करने पर यह भी पहले के क्षेत्र के समान होता है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि जितना पहले गुणहानि का द्रव्य है उतना ही द्वितीय आदि सब गुणहानियों का मिलकर द्रव्य है। तो पहले गुणहानि का द्रव्य कितना है? गुणहानि मल्टीप्लाइड 3/4 अ, तो बाकी दो से लेकर आगे की सभी गुणहानियों का मिलकर द्रव्य कितना है वो भी उतना ही है। यानी हमारे पास अभी ऐसे दो समान क्षेत्र मिल गए, इतना टोटल द्रव्य है, वर्गणाएं टोटल इतनी है, ये पहले गुणहानि की है और ये दो से लेकर बाकी सभी गुणहानियों के मिलकर इतनी है, ये नंबर ऑफ वर्गणाओं की बात चल रही है। अब आगे पुनः यहाँ 1/4 भाग प्रमाण विष्कंभ वाला और एक गुणहानि प्रमाण आयाम वाला क्षेत्र है, उसे ग्रहण कर पहले के क्षेत्र में जोड़ देने पर गुणहानि प्रमाण परमाणु वर्गणाएं उत्पन्न होती है। अब क्या करना है, ये भी 3/4 है और ये भी 3/4 है, इसमें से 1/4 निकालना और यहाँ जोड़ देना। 1/4 निकाला तो ये कितना होगा, आधा, और यहाँ 1/4 जोड़ दिया तो ये हो गया फुल, ये एक गुणहानि होगी, वो ये आधी गुणहानि होगी। हाँ हाँ, अ लागा ना नागे, एक अ मल्टीप्लाइड बाय गुणहानि, एक गुणहानि मल्टीप्लाइड बाय है और ये आधी गुणहानि मल्टीप्लाइड बाय अ, हाँ आधा मल्टीप्लाइड बाय, एक ही बात होती है, मल्टीप्लीकेशन में गुणहानि को आधा करो, ये इसका कहना ऐसा ही चाहिए। यहाँ हम गुणहानि को आधा करेंगे तो ये डेढ़ गुणहानि हो जाएगी ऐसी। पुनः शेष क्षेत्र को बीच में से फाड़कर, अच्छा वो आपको डेढ़ गुणहानि बनानी है ना, इसलिए बीच में से फाड़कर क्या करते हैं, शेष कहाँ गया, शेष क्षेत्र को एक शेष कितना रह गया, आधा अ रह गया था और एक बाजू एक गुणहानि रही थी, इसको बीच में से फाड़कर पार्श्व भाग में जोड़ने पर यहाँ भी गुणहानि के अर्धभाग प्रमाण परमाणु वर्गणाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे ये अ प्रमाण है ना, एक अ यहाँ हो गए और यहाँ आधा है आधा है, अभी उसके बदले क्या करना है, इसको भी पूरा अ कर दो और ऊपर से, क्योंकि ऐसा था एक के ऊपर एक था, उसको फाड़कर हमने बाजू में रख दिया, तो ये आधे गुणहानि प्रमाण अ हो गया, पहले हमने डायरेक्ट बताया था अभी आधे गुणहानि प्रमाण अ हुआ और पहला उसमें से हमने वो जोड़ दिया था वहां पर, वो पूरी एक गुणहानि प्रमाण अ हो गए थे। 190 पृष्ठ पर है हम। यहाँ वर्गणाओं के प्रमाण की बात चल रही है, यहाँ हम नीचे से अभी तीसरी लाइन, इस प्रकार डेढ़ गुणहानि प्रमाण परमाणु वर्गणाएं होती है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्गणाएं कितनी है, डेढ़ गुणहानि प्रमाण परमाणु वर्गणा, टोटल वर्गणाएं, नंबर ऑफ टोटल वर्गणाएं, जैसे अनुवर्गणा होती है अनंत, द्विप्रदेशी भी है अनंत, स्कंद ध्रुव स्कंद तक सभी अपनी अपनी अनंत अनंत होती है अपनी अपनी, और फिर ऊपर जो कुछ कम प्रमाण में हो जाती है असंख्यात हो जाती है, और फिर ऊपर जो है महास्कंद एक ही होती है वर्गणा, एट अ टाइम एक ही रहेगी ना, उसकी वर्गणा शलाका की बात नहीं, यहाँ पर कितनी वर्गणाएं एट ए टाइम होती है उसकी बात है, तो टोटल वर्गणाएं कितनी होती है, हाँ तो अ हमने क्या माना है, परमाणु वर्गणाएं कितनी है तो अनंत है, उसको हमने अ नाम दिया, तो उसके प्रमाण से सभी हमको गिनने हैं, तो डेढ़ गुणहानि इतनी हो जाएगी, डेढ़ गुणहानि मल्टीप्लाइड बाय एक प्रदेशी वाला जो अनंत है, उतनी सारी टोटल नंबर ऑफ वर्गणाएं होगी। यहां तक आसान है समझने में, प्रेरणा बहन आगे बढ़ेंगे नहीं नहीं कल ये सारा कुछ नहीं समझ, हाँ आज थोड़ा थोड़ा समझता है। हाँ देखा, फिर से नीचे से तीसरे, इस प्रकार डेढ़ गुणहानि प्रमाण परमाणु वर्गणाएं होती है, परमाणु वर्गणा के प्रमाण से हमने करना है, हमने उसको अ नाम दिया, अ मल्टीप्लाइड बाय डेढ़ गुना नहीं, इतनी टोटल नंबर ऑफ वर्गणाएं होगी। इसलिए डेढ़ गुनहानी से परमाणु वर्गणा के गुणित करने पर संदृष्टि की अपेक्षा सब द्रव्य का प्रमाण इतना होता है 3072। हमने पहली गुनहानी कितनी, पहली गुनहानी नहीं, एक प्रदेशी वर्गणाएं कितनी मान ली थी संदृष्टि में, 256, और उसको डेढ़ गुनहानी यानी 12 से गुणा करना, 1272 इस सहाले 3072 आ गए ना। ये जो 256 क्या है, एक प्रदेशी वर्गणाओं का प्रमाण हमने मान लिया है तो अनंत, हमें समझाने के लिए यहाँ संदृष्टि दी है तो उसका प्रमाण 256 है। हमने यहाँ डेढ़ गुणहानी लेनी है मल्टीप्लाई करने के लिए, गुणा करने के लिए, एक गुणहानी 8 की मानी है तो 8 का डेढ़ गुना 12 हो गया, तो 256 को 12 से गुणा किया तो 3072 आ गए, यानी 256 मल्टीप्लाइड बाय 12। पुनः यहाँ डेढ़ गुणहानी 12 से, अभी उल्टा करके दिखा रहे, पूरे द्रव्य को डेढ़ गुणहानी से भाग देंगे तो पहले गुणहानी का प्रमाण आएगा। तो पुनः यहाँ पहले गुणहानी का नहीं, सॉरी, एक प्रदेशी के प्रमाण, एक प्रदेशी वर्गणा का प्रमाण आएगा। पुनः यहाँ डेढ़ गुणहानी 12 से सब द्रव्य के भाजित करने पर परमाणु वर्गणा 256 आती है। पहले गुणा करके बताए, फिर उसी को भाग दिया। अब ये एक प्रदेशी की बात समझ में आ गई। टोटल द्रव्य कितना होता है, डेढ़ गुणहानी से गुणित करने पर जितना होता है उतना होता है, तो उसका अवहार काल कितना आया कि जिस संख्या से टोटल द्रव्य को भाग देने पर 256 आते हैं तो अवहार काल कितना होगा, 12, यानी डेढ़ गुणहानी हुआ। तो एक प्रदेशी वर्गणा का अवहार काल डेढ़ गुणहानी है। प्रदेश की अपेक्षा अलग होगा, अभी प्रदेश की बात यहाँ नहीं, अभी जो समझ रहा है ना द्रव्यार्थता, अभी पूरे ख्याल में ले लो, अभी बीच में प्रदेश को मत लाओ। अब ये दूसरे वाक्य में मैंने जो असंख्यात लोग से डेढ़ गुणहानी से गुणा किया था ना, वैसा नहीं है। शुरू में मैंने तीसरे लाइन में क्या कहा था, असंख्यात लोग गुणा डेढ़ गुणहानी, वैसे नहीं है। अकेले डेढ़ गुणहानी कितनी है, असंख्यात लोग कितनी है, ऐसा उसका अर्थ लेना। देखो ऊपर से तीसरी लाइन अवहार काल में है ना, दूसरे लाइन के अंत में क्या लिखा था, असंख्यात लोक मात्र डेढ़ गुणहानी, यानी डेढ़ गुणहानी का प्रमाण ही असंख्यात लोक है, क्योंकि एक गुणहानी का प्रमाण असंख्यात लोक है, उसमें और आधा मल्टी मिला दो तो भी असंख्यात लोक ही होगा। अब क्या कहते हैं, इस प्रकार देखो, परमाणु वर्गणाएं का अर्थ क्या है, एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, एट ए टाइम कितनी परमाणु होगी, 256 होती है ना, हमने मान लिए परमाणु वर्गणाएं, अभी परमाणु को वर्गणा कह दिया, ऐसे एट ए टाइम परमाणु कितने हो गए इस विश्व में, जो हमने अनंत कहा वो 256 मान लिया है संदृष्टि में। जैसे हमने ये संदृष्टि निकालना, देखो पीछे के पेज पर 183 के 85 पर होता ना, वो 185 पेज पर, ये बीच वाला जो लिखा है, हाँ, प्रथम गुणहानी में नीचे से पढ़ना, 256 है वो एक प्रदेशी वर्गणाओं का प्रमाण है, मिला मंजूबेन, हाँ, और द्विप्रदेशी उसके ऊपर 240 वर्गणाएं हैं, यानी दो प्रदेशी ऐसी वर्गणाएं कितनी इस विश्व में, तो 240 है, यानी 256 से कुछ कम है। हाँ, उसकी बाद में हम निकालेंगे, अभी उसके तरफ आने वाले हैं अभी। तो 256 कैसे आते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्गणाएं कितनी है, 3072, उसको डेढ़ गुणहानी 12 से भाग देंगे हाँ तो 256 आते हैं। उसी को अवहार काल कहते हैं, डेढ़ गुणहानि को यहाँ अवहार काल कहा। कितने काल से अपरुत होते हैं यानी उसका अर्थ है उसका अवहार काल कितना है। ये काल नाम क्यों दिया, क्योंकि ऐसी पद्धति है उसको अवहार, वो काल में गिनते हैं। अब हम आगे के पेज पर आते हैं 191 तक। यहाँ तो अरविंद भाई बराबर है ना, नहीं समाधान हुआ। हाँ अच्छा, डेढ़ गुणहानि प्रमाण में है। अच्छा अच्छा, डेढ़ गुणहानि प्रमाण परमाणु वर्गणाय और आदि के ऐसा लेना है तो टोटल द्रव्य ने सब द्रव्य कितना होता है या टोटल वर्गणाय कितनी होती है ऊपर हम पढ़ेंगे। एवं दिवड गुणहानि मित्त परमाणु वर्गणाओ होंती, दिवड गुणहानि परमाणु वर्गणाय गुणिदाय संदिठे सौव दव प्रमाण मित्यम होती। ये सौव दव प्रमाण मित्यम जो है शब्द वो वहां पर भी लगाना है। देखो ऐसा लिखना, इस प्रकार सब द्रव्य का प्रमाण, पहले सुन लो अभी कुछ करेक्शन मत करना। इस प्रकार सब द्रव्य का प्रमाण डेढ़ गुणहानि प्रमाण परमाणु वर्गणाय होती है, ऐसा चाहिए ना। इस प्रकार सब द्रव्य का प्रमाण कितना है, डेढ़ गुणहानि प्रमाण परमाणु वर्गणाय। डेढ़ गुणहानि प्रमाण कहो या डेढ़ गुणहानि गुणित परमाणु वर्गणाय कहो, एक ही बात है। सब द्रव्य का प्रमाण, द्रव्य है ना, वर्गणा को द्रव्य कहा, सब वर्गणाओं को कहो तो ज्यादा क्लियर होगा। ये अपने क्लैरिटी के लिए लिखना है। इस प्रकार सब वर्गणाओं का प्रमाण यहां वर्गणाओं को ही बार बार द्रव्य कहा है। पेंसिल से लिखे रखो, ये अपने लिए है ये सब। देखो इस प्रकार सब वर्गणाओं का यानी द्रव्य का प्रमाण डेढ़ गुणहानि प्रमाण परमाणु वर्गणाएं होती है, बराबर है। हाँ अरविंद भाई, हाँ इसलिए डेढ़ गुणहानि से परमाणु वर्गणा के गुणित करने पर संदृष्टि की अपेक्षा सब द्रव्य का प्रमाण 3072 होता है। ये सब द्रव्य का प्रमाण यहाँ आया नीचे, वो हमने ऊपर फिर ले लिया था। अब हम 191 पृष्ठ पर आते हैं। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, पुनः द्विप्रदेशी वर्गणा के प्रमाण से, वो प्रमाण के को प्रमाण से करो, सब द्रव्य कितने काल के द्वारा अपहृत होता है यानी द्विप्रदेशी वर्गणा का अवहार काल कितना है। दूसरी भाषा में हम बोल रहे हैं यानी अभी क्या करना, टोटल नंबर ऑफ जो है ना 3072 उसको 240 से भाग देंगे तो जो संख्या आएगी उसको क्या कहेंगे हम, वो द्विप्रदेशी का अवहार काल है। तो हमने जब 256 बड़ी संख्या से भाग दिया था तो डेढ़ गुणहानि आई थी, अब छोटी संख्या से भाग देंगे तो वो संख्या थोड़ी ज्यादा आएगी तो साधिक कहेंगे उसको। देखो कहते साधिक डेढ़ गुणहानि स्थानांतर काल के द्वारा अपहृत होता है, यानी यहाँ क्या किया उन्होंने 3072 को 240 से भाग दिया तो साधिक 12 आ गए, उसी को साधिक डेढ़ गुणहानि कहा। अब कहते इसी प्रकार ऊपर भी जानकर ले जाना चाहिए। ऊपर यानी तीन प्रदेशी कितने हैं हमने देखा यहाँ, हाँ मंजू बहन 240 में से और 16 कम कर दो, हाँ कितने आए 224 आ गए, हाँ 224 आए ना। अब तीन प्रदेशी वर्गणाओं का अवहार काल कितना होगा, 3072 डिवाइडेड बाय 224 यानी वो और साधिक में चला जाएगा। इतनी विशेषता है कि डेढ़ गुणहानि के अर्ध छेदों से उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात के अर्ध छेदों के भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसका विरलन करके, यानी पहले क्या करना है, उत्कृष्ट असंख्याता के असंख्यात के जो अर्ध छेद है उसको डेढ़ गुणहानि के अर्ध छेदों से भाग देना है, जो संख्या आएगी उसको विरलन करके उस विरलन राशि पर उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात के अर्ध छेदों को समान खंड करके देय रूप देने पर एक एक विरलन अंक के प्रति डेढ़ गुणहानि के अर्ध छेदों का प्रमाण प्राप्त होता है। वही बात है ना, पहले उसको भाग दिया, उनको डेढ़ गुणहानि का अर्ध छेद निकालना था। डेढ़ गुणहानि के अर्ध छेद उनको निकालने थे। हम दूसरी संख्या लेकर ले सकते इसको, दूसरी संख्या, मगर वो डेढ़ गुणहानि का प्रमाण 12 है ना, उसके ऐसे अर्ध छेद ज्यादा नहीं निकलेंगे। डेढ़ गुणहानि, एक मिनट, प्रमाण वही आएगा और फिर उसको विरलन करके फिर उसके ऊपर वो दिया, इसलिए प्रमाण तो उतना ही आता है। हाँ, कितना प्रमाण लेना है, डेढ़ गुणहानि के अर्ध छेद प्रमाण लेना है। ये विरलन को भूल जाओ बीच में से, क्या करना है, डेढ़ गुणहानि के अर्ध छेद प्रमाण राशि को लेना है। इतनी बात समझ में? हाँ, देखो क्या कहते हैं कि हमको क्या प्राप्त हुआ, डेढ़ गुणहानि के अर्ध छेदों का प्रमाण प्राप्त हुआ। पुनः यहां पर एक कम विरलन प्रमाण अंकों के प्रति प्राप्त डेढ़ गुणहानि के अर्ध छेदों प्रमाण गुणहानियों के आगे जाने तक वह असंख्यात लोक प्रमाण काल के द्वारा अपूर्त होता है। पहले हमने कितना मिला था अपने को, डेढ़ गुणहानि, हमें पहली वर्गणा का जो अवहार काल है डेढ़ गुणहानि था, दूसरे में साधिक हुआ, तीसरे में और साधिक हुआ, और साधिक हुआ, तो ऐसे होते होते डेढ़ गुणहानि के अर्ध छेद प्रमाण गुणहानि आगे चले गए। कितने आगे चले, डेढ़ गुणहानि के जितने अर्ध छेद है उतने स्थान आगे चले गए। द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, चार प्रदेशी करते 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 कितने स्थान, हाँ, तो डेढ़ गुणहानि के अर्ध छेद प्रमाण आगे चले गए। हाँ, अर्ध छेदों प्रमाण गुणहानियों के आगे जाने तक उसके उतने स्थान नहीं, उतनी गुणहानियां चली गई, तो क्या हुआ, असंख्यात लोक प्रमाण काल के द्वारा अपहृत होता है। वहां प्रमाण कितना आया, अवहार काल का, बढ़ते बढ़ते असंख्यात लोक प्रमाण हो गया। हमें इतना ही लेना है, विशिष्ट स्टेज पर अवहार काल बढ़ते बढ़ते विशिष्ट स्टेज पर असंख्यात लोक प्रमाण हुआ, उसके आगे अनंत काल के द्वारा अपहृत होता है, उसके आगे 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 चले गए द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, आगे बढ़ते गए तो कितना आया अवहार काल, अनंत आया। मूल में सभी वर्गणा में अनंत है, अभी हम वो असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात वाले में चले जाएंगे। प्रत्येक शरीर वर्गणाएं कितनी इस विश्व में, असंख्यात है। बादर निगोद वर्गणाएं कितनी है, असंख्यात है। उससे टोटल अनंत को भाग देंगे तो क्या आएगा भागहार, अनंत आएगा। इसलिए कहते हैं आगे जाने पर अवहार काल अनंत आता है। क्या ले, देखो, आगे अनंत काल के द्वारा अपहृत होता है। इस प्रकार असंख्यात भाग हीन वर्गणाओं में अंतिम वर्गणा के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। यह असंख्यात भाग हीन वर्गणाएं कहां हमने देखी थी, वो ध्रुव स्कंध में अनंत स्थान ऐसे थे, असंख्यात भागहीन थे, फिर संख्यात भागहीन हो गए, फिर संख्यात गुणाहीन हो गए, फिर असंख्यात गुणाहीन हो गए। ये ध्रुव स्कंध में ही चल रहा है अभी, तो वहां तक ये ले गए, वहां ये प्रमाण अनंत हो गया उसका, भागहार का प्रमाण, अवहार का। अभी आगे अभी गए ही नहीं ये, उसके बाद ये असंख्यात भागहीन तक समझ में आए ना, इसको हमने पढ़ा था शुरू में वर्गणाओं का प्रमाण, ये जो था थोड़ा कम होते गया तो शुरू में उसका असंख्यातवा भाग कम होते गया था, चय का प्रमाण असंख्यातवा भाग था, फिर बाद में चय का प्रमाण कितना होगा, बड़ा होगा, संख्यात भाग इतना हो जाएगा, तो उसको अब कह रहे हैं। उसके बाद संख्यात भागहीन वर्गणाओं की प्रथम वर्गणा के प्रमाण से जब संख्यात भागहीन वर्गणा शुरू हो जाती है, वहाँ की जो प्रथम वर्गणा है अब उसका आवार कितना होगा, काल, सब द्रव्य कितने काल के द्वारा अपहृत होता है, तो अनंत काल के द्वारा अपहृत होता है। इसके आगे तो अनंत ही प्रमाण आने वाला है, असंख्यात भागहीन वाली अंतिम वर्गणा तक अनंत प्रमाण तक पहुंचे। शुरू कहाँ से किया था, एक प्रदेशी वर्गणा से, वहाँ अवहार काल कितना था, डेढ़ गुणहानि था, डेढ़ गुणहानि का भी प्रमाण असंख्यात लोक ही, आगे साधिक होते 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 फिर वो दो गुणहानि के तो चार गुणहानि, दस गुणहानि, अनेक गुणहानि हो जाएगी, फिर भी असंख्यात लोक ही रहेगा उसका प्रमाण। तो असंख्यात लोक होते होते बाद में क्या होगा, वो प्रमाण अनंत हो गया। तो जहां पर चय का प्रमाण संख्यात भागहीन हो जाता है, वहां की जो वर्गणा है, वहां जितनी वर्गणा है, हाँ, तो उसका अवहार काल कितना होगा, तो अनंत है, तो उसको कहते हैं अनंत काल के द्वारा अपहृत होता है। ये भाषा अपने को अटपटी लगती है, हाँ, यथा, अब उसी को समझा रहे हैं। संख्यात भागहीन वर्गणाओं की प्रथम वर्गणा के प्रमाण से सब वर्गणाओं के द्रव्य में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उसे शलाका रूप से स्थापित करके, यानी क्या कहें, टोटल जो वर्गणा है उसको वो प्रथम वर्गणा के प्रमाण से भाग दिया, जो संख्या आई पर्टिकुलर उसको वहां शलाका रूप से स्थापित किया। पुनः उस वर्गणा के प्रमाण से सब द्रव्य के भाजित करने पर शलाका प्रमाण काल के द्वारा अपहृत होता है। वही बात बता रहे हैं, ये डबल डबल बात बताते हैं ना, शलाका की ये की, अपनी भाषा में क्या करना, टोटल द्रव्य डिवाइडेड बाय वहां की वर्गणा का प्रमाण जो आएगा उसको कहेंगे उसका आवहार काल है, वो कितना होता है, अनंत होता है, क्योंकि पहले भाग दिया शलाका रखी और फिर कहते फिर उसको भाग दिया तो वो शलाका प्रमाण होता है। जैसे हजार को 50 से भाग दिया कितना आया, 20 आया, 20 को बाजू रखा, फिर हजार को 50 से भाग दिया 20 आया, वो शलाका प्रमाण हुआ, ऐसा कहते हैं। ये उसका अवहार काल है, वो अनंत है। वेरियस पोजीशन पर कितना आवहार काल है उसको बता रहे हैं। स्टार्टिंग डेढ़ गुणहानि से की थी, डेढ़ गुणहानि भी असंख्यात लोक है, आगे भी साधिक साधिक होते होते असंख्यात लोक ही होते गया, असंख्यात गुणा भी हो गया, बाद में वो अनंत हो गया भागार, आवहार काल अनंत हो गया। कहाँ तक, तब तक तो वो असंख्यात भागहीन वाला ही चय चल रहा था, वर्गणाओं का प्रमाण असंख्यात भागहीन इतना चल रहा था, आगे चलकर कितना, अभी संख्यात वे भागहीन हो जाएगी वर्गणाएं, तब उसका प्रमाण कितना है आवहार काल का, वो भी अनंत है। वर्गणाएं अभी ऊपर कम होती जाएगी, छोटी संख्या से टोटल नंबर ऑफ वर्गणाओं को भाग देंगे तो अभी तो भागहार उसका अनंत आने लगा है, तो इसके आगे भी अनंत ही रहेगा। ध्रुव स्कंध में तो सबसे बड़ा अनंत आएगा, 3072 को एक से भाग देंगे तो 3072 वाला आएगा, तो जितना टोटल द्रव्य का प्रमाण है उतना अवहार काल का प्रमाण आएगा उसका। देखो इस प्रकार जानकर महास्कंध वर्गणा के प्राप्त होने तक कथन करना चाहिए, यानी कहीं भी जाओ इसके आगे भागार अनंत ही आने वाला है, क्योंकि ऊपर ऊपर तो वर्गणाओं की संख्या कम होती चली जाएगी। सचित वर्गणा भी इसमें आ गई, असंख्यात है तो पूरे टोटल अनंत को असंख्यात से भाग दो तो भी अनंत ही आएगी। हमें वर्गणा की संख्या नहीं लेना है, भागहार निकालना है, अवहार काल निकालना है। शुरू में तो अनंत थी, बाद में कम होने लगी, तो भी उसका प्रमाण तो क्या, अवहार काल का प्रमाण अनंत आएगा। ये तो द्रव्यार्थता की क्या हुआ, अवहार काल। हाँ, अभी थोड़ा आसान लगा। हाँ, कल तो पढ़ा था बस। अब प्रदेशार्थता, प्रदेशार्थता किसको कहना अभी? तो जो हमने 256 ली थी ना, एक प्रदेशी, तो उसकी द्रव्यार्थता भी 256 है, प्रदेशार्थता भी 256 ही है, क्योंकि सिंगल प्रदेशी है वो, एक प्रदेशी है, जितने प्रदेश है उससे गुणा करो। द्विप्रदेशी 240 द्रव्यार्थता थी, वो द्विप्रदेशी है तो उसको दो से गुणा करेंगे तो 480 वहां प्रदेशार्थता हो जाएगी। प्रदेशों की संख्या, परमाणु, परमाणु को ही यहाँ प्रदेश कहा है, कितना क्षेत्र व्यापता है उसको प्रदेश नहीं कहा है। प्रदेश ही द्विप्रदेश ही नहीं, दोन प्रदेश वाला ये स्कंद, दो परमाणुओं का स्कंद। त्रिप्रदेशी हमने 224 देखी थी, उसको तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, 224 को तीन से गुणा किया, 672 आ गए, ये प्रदेशार्थता कहलाएगी। अभी प्रदेशार्थता का अवहार काल निकालना है, वहां तो इसकी टोटल संख्या 3072 थी, अब यहाँ वो प्रमाण अलग होगा। टोटल जो होगा वहां का, जो टोटल होगा प्रदेशों की, जो टोटल संख्या होगी प्रदेशों की, टोटल की संख्या कितनी होगी, कितना अनंत, कुछ बता दो ना, पुद्गल राशि की भाषा में बताओ। पुद्गल राशि की भाषा में बोलाओ ना, पुद्गलों से, पुद्गलों के कितने भाग प्रमाण हो गए? हाँ, सभी वर्गणाओं के प्रदेश मिलकर कितने हो गए? टोटल जितना पुद्गल द्रव्य है उतने प्रमाण हो गए। हाँ, यानी पुद्गल राशि है ना, टोटल पुद्गल राशि होगी। अब टोटल पुद्गल राशि को इससे भाग देंगे तो इसका आवार काल आएगा, एक प्रदेशी वाला। द्विप्रदेशी से भाग देंगे तो उसका आवार काल आएगा, आगे वाले की उसका आवार काल आएगा। अभी वहां तो ये सबसे बड़ा था, अब यहाँ वो प्रमाण यहाँ नहीं रहेगा, तो अभी वो क्या होगा। हाँ, वो क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। अब देखो, अब 192 पृष्ठ पर प्रदेशार्थता की अपेक्षा अवहार काल का कथन करने पर सब द्रव्य को यवमध्य के प्रमाण से करते हैं। अब यवमध्य के प्रमाण से क्यों कर रहे हैं? ये यवमध्य क्या होता है, कल हमने देखा था, उसको फिर देखते हैं। 186 पृष्ठ पर, यहां भी देखा था 85 पर भी, 86 पर ज्यादा क्लियर है। देखो, अभी जो हमने दो तीन संख्या लिखी थी, पहले गुणानी में नीचे से देखते हैं, 256 को तो एक से गुणा किया 256 आ गए, 240 को दो से गुणा किया 480 आ गए, 224 को तीन से गुणा किया 672 आ गए, 208 को चार से गुणा किया, चतुप्रदेशी है ना, तो 832 आ गए, 192 को पांच से गुणा किया 960 आ गए, 174 को छह से गुणा किया 1056, 160 को 7 से गुणा किया तो 1120, और अंतिम वर्गणा 144 को 8 से गुणा किया तो 1152 आ गए। दूसरी गुणहानि में आए, वहां 128 को 9 से गुणा किया तो भी संख्या उतनी आई, 1152। द्वितीय गुणहानि की द्वितीय वर्गणा में देखो, पहले तो 16-16 का डिफरेंस था, दूसरी गुणहानि शुरू हुई तो 8 का डिफरेंस है, द्रव्यार्थता में 8 का डिफरेंस है, वर्गणाओं के प्रमाण में 8 का डिफरेंस है। तो वर्गणाएं 128 थी, 9 प्रदेशी थी, तो उसके परमाणु की संख्या 1152 आ गई, परंतु 10 प्रदेशी हो गई तो 128 में से 8 कम हुए, तो 120 को 10 से गुणा किया तो 1200 आ गए, फिर 120 में से 8 कम होने पर 112 हुए, 112 को 11 प्रदेश से गुणा करेंगे तो 1232 आ गए। अब जो कहना चाहते वो यहां बात आती है यव मध्य की। 112 के बाद 8 कम करने पर 104 को 12 से गुणा करते हैं तो 1248 आते हैं। ये पहला यव मध्य कहलाएगा। यव मध्य यहां दो पॉइंट पर होते हैं। यहां पर 11 प्रदेशी से भी हमने मल्टीप्लाई 12 प्रदेशी से मल्टीप्लाई किया तो 1248 हो गए प्रथम यव मध्य। और फिर 104 में से 8 गए 96 हुए, उसको 13 से गुणा किया तो भी 1248 आ गए। इसके बाद 88 को 14 से गुणा करेंगे तो 1232 आते हैं। अभी इससे कम हो जाता है, 12 प्रदेशी तक गए ना, 12 प्रदेशी यानी जितने अभी हमारी डेढ़ गुणहानी भी 12 की थी, उतने प्रदेशी होने तक यानी असंख्यात प्रदेशी होने तक यव मध्य चलाएगा। दो यव मध्य आएंगे उसके बाद संख्या घटती चली जाएगी, प्रदेशों की संख्या घटती चली जाएगी। यव मध्य तक प्रदेशों की संख्या बढ़ती गई है। नहीं, अभी नीचे कम होती है ऊपर बहुत ज्यादा होती है, ये कुछ अलग ही है प्रमाण, यहाँ का प्रमाण ही अलग है। नीचे तो उल्टा उन्होंने समझाया, 1248 का आधा होने के लिए, आधा हम मान लेते 672 करीबन, तो उल्टा 9 स्थान नीचे आना पड़ा। और आगे 1248 से लेकर हम 620 तक चले जाएंगे तो आगे 18 स्थान जाना पड़ता है। ये कुछ अटपटा उसका प्रमाण है, एग्जैक्ट उतने ही स्थान जाने पर गुणहानि नहीं होती है। तो यहां पर जो यव मध्य है उसकी अपेक्षा से बात करेंगे। अब हम पढ़ते जहां आए थे वहां पर, देखो 192 पृष्ठ पर हम पढ़ते यव मध्य क्या है, क्या पता चला ना? हाँ, 12वें स्थान पर आए थे वहां यव मध्य आया था। अब प्रदेशार्थ की अपेक्षा आवाहन काल का कथन करने पर सब द्रव्य को यव मध्य के प्रमाण से करते, टोटल जितना द्रव्य है उसको यव मध्य 1248 के प्रमाण से करेंगे, यानी टोटल द्रव्य डिवाइडेड बाय यव मध्य करेंगे। प्रमाण से करते यथा एक प्रक्षेप को डेढ़ गुणहानि से गुणित कर, यहाँ प्रक्षेप कितना था जहाँ हमने अभी देखा था यव मध्य, प्रक्षेप का अर्थ होता है वहाँ का चय कितना था, 8-8 का था, तो वो एक प्रक्षेप कहलाएगा। यानी द्रव्यार्थता का प्रक्षेप है वो, द्रव्य उतना उतना घटते चला गया था, 8-8 से घटता गया था जहाँ यव मध्य आया था, बराबर है, तो उसको एक प्रक्षेप कहा। तो एक प्रक्षेप को डेढ़ गुणहानि से गुणित, डेढ़ गुणहानि कितनी हमारी 12 की, तो हमारा अभी यव मध्य 12वें स्थान पर भी है और 13वें स्थान पर भी है। तो एक प्रक्षेप को डेढ़ गुणहानि से गुणित, एक अधिक डेढ़ गुणहानि से गुणित करने पर यानी 8 को 12 से भी गुणा करो और 13 से भी गुणा करो, यव मध्य का प्रमाण आता है। 12 × 13 156 आता है, और उसको यहाँ एक प्रक्षेप के बदले दो प्रक्षेप से गुणा करें तो दो यव मध्य आएंगे, एक ही प्रक्षेप से गुणा करेंगे तो एक यव मध्य आता है। यहाँ लिखा है देखो, पहले उन्होंने जो संदृष्टि लिखी है, एक प्रक्षेप, एक का अर्थ होता है एक प्रक्षेप, और 8 का डेढ़ गुणहानि का, डेढ़ गुणहानि 8 का डेढ़ गुणा किया, फिर 8 का डेढ़ गुणा किया, यानी वो एक प्लस लेना है, पहले वाला है 1 + 8 × हाँ, यानी एक प्लस डेढ़ गुणहानि 1 + 12 × 12 तो 13 × 12 वो एक है, वो प्रक्षेप का नहीं, वो एक है, वो प्लस का साइन है, उसमें एक मिलाना है उसमें। अब द्वि प्रक्षेप, एक प्रक्षेप की वैल्यू 8, दो प्रक्षेपों की वैल्यू होगी 16, तो 156 को 16 से गुणा करेंगे तो 2496 आते हैं। दोनों यवमध्यों के एक साथ उन्होंने निकाले हैं। फिर उसका आधा करेंगे तो दो यवमध्य 1248 मिल गए। पुनः इसे गुणहानि के अर्ध भाग से गुणित करने पर इतना होता है। गुणहानि का आधा भाग ने ऊपर की जो संदृष्टि वो वैसे ही रखी और उसको 8/2 यानी 4 से गुणा करना है। उसको अभी ब्रैकेट में समझाया है। गुणहानि 8 का अर्ध भाग 8/2 यानी 4 है। इस 4 से दो यवमध्य को गुणा करने से कितना आया? 9984 आता है, जो द्वितीय गुणहानि का कुल प्रदेशाग्रह है। टोटल प्रदेशाग्रह क्यों? क्योंकि उन्होंने दो तो मिले यवमध्य और उसको 4 से गुणा किया उन्होंने। क्यों 4 से गुणा किया? क्योंकि गुणहानि 8 की है और हमने दो यवमध्य उसमें से लिए तो 4 से गुणा किए तो टोटल द्वितीय का द्रव्य है। परंतु उसमें टोटल उन्होंने 1248 प्रमाण में सबको लिया, 8 को ही, 8 × 8 = 1248 प्रमाण से नहीं है, कम है। किंतु इसमें यवमध्य से पूर्व के यहाँ एक शब्द डालना और बाद के, देखो इसमें यवमध्य से पूर्व के और बाद के तीन तीन निषेकों के प्रदेशाग्रह वो कम है ना, जो प्रक्षेप यवमध्य की अपेक्षाहीन है। 1248 की अपेक्षा उसके पूर्व के प्रक्षेप देखेंगे। 1248 के पहले वाली क्या संख्या थी? देखो 1232 यानी दो प्रक्षेप कम है ना, क्योंकि द्रव्यार्थता में एक प्रक्षेप, द्रव्यार्थता का एक प्रक्षेप कम था उसमें। तो दोनों ओर के हमने गिनेंगे तो यहां समझाते। देखो पूर्व के और बाद के तीन तीन निषेकों के प्रदेशाग्र जो प्रक्षेप यवमध्य की अपेक्षा हीन है, यानी वहां 1248 है तो उसके पूर्व वाला 1232 का है, उसके पूर्व वाला 1200 का है, उसके पूर्व वाला 1152 का है, तो वहां कम है। वे प्रक्षेप द्वितीय गुणहानि के सर्व प्रदेशाग्र से अधिक है। यहाँ द्वितीय गुणहानि का द्रव्य कितना बताया उन्होंने? 9984। परंतु क्या वो 9984 होगा? तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 1248 को पहले दो गुणा किया और फिर और उसको 4 गुणा किया है। अपनी भाषा में 1248 को 8 गुणा किया। यदि सभी निषेक यवमध्य जितने होते तो ये हो सकता है। परंतु पहले के तीन और बाद में तीन वो कम संख्या वाले हैं, घटते चले गए हैं, तो उसको हम ऋण राशि करके घटाना पड़ेगा, अपनयन करेंगे। तो यहाँ अधिक प्रदेशों का अपनयन करते हैं। जो पहले हमने सबको 1248 माना था तो 1232 है एक जगह, या एक जगह 1200 है, एक जगह 1152 है, तो ये अधिक प्रदेशाग्र जो गिने हैं वो अधिक को अभी निकालना पड़ेगा उसमें से। यथा गुणहानि के अर्ध भाग प्रमाण गच्छ के दूने संकलाना संकलन प्रमाण प्रक्षेप यहाँ अधिक है। गुणहानि का अर्ध भाग प्रमाण 4 है, उसके दूने संकलन कितने होते हैं? 4 का संकलन कितना है? 10, उसके 2 × 20, तो उतने प्रक्षेप यहाँ अधिक है। क्योंकि यवमध्य से पूर्व प्रक्षेप गुणकार की एकोत्तर वृद्धि देखी जाती है और अधवान गुणकारी गुणकार की एकोत्तर हानि देखी जाती है और गच्छ को एक अधिक गच्छ से गुणित करने पर द्विगुणे संकलन को छोड़कर अन्य का आगम संभव नहीं है। क्या कहते हैं, गच्छ चार है ना, अब चार को एक अधिक चार यानी पांच से गुणा करेंगे तो दो गुणा संकलन के अलावा कुछ नहीं आएगा, ऐसा कहते हैं। और हम भी संकलन कैसे निकालते हैं, चार गुणा पांच डिवाइडेड बाय टू, तो डिवाइडेड बाय टू है और उसको दुगुणा किया हमने, हाँ तो वही आए ना संकलन के दुगुणा, तो बीस आ गए। फिर इसको ब्रैकेट में समझा रहे, देखो ये ऊपर जो ब्रैकेट था कहाँ, गुणहानि आठ वाला ब्रैकेट मिला ऊपर से छठी लाइन में, वो ब्रैकेट जो शुरू हुआ था वो चार लाइन के पैराग्राफ के बाद वो ब्रैकेट बंद करना था। समझा क्या कहा करना है, अधिक है सर्व प्रदेशाग्र से अधिक है वहां तक वो ब्रैकेट पूरा करना, क्योंकि उन्होंने अपनी ओर से वो विशेषार्थ के रूप में डाला है। ऐसे अभी ये दोबारा नीचे भी और समझा रहे, नीचे के पैराग्राफ में भी ब्रैकेट किया उन्होंने, नहीं उसका एंड है परंतु ये ब्रैकेट वाली बात हमें समझाने के लिए उन्होंने डाली है। इसको फिर पढ़ते, उसी का अर्थ जो अभी हमने पढ़ा ना उसी को बता रहे दोबारा। एक गुणहानि आठ, उसका आधा चार है, यहां पर यह चार गच्छ है, चार का संकलन, संकलन कैसे निकालते, चार का संकलन करते थे एक से लेकर चार तक की सभी संख्याओं का जोड़ देना, तो एक अधिक दो अधिक तीन अधिक चार तो दस आते हैं, इसका दुगुना बीस है। अथवा दूसरी भाषा में कैसा निकालना कि गच्छ चार को एक अधिक गच्छ पांच से गुणा करने पर बीस आता है, उसी को हमने दुगुना संकलन किया कहा। पर पृष्ठ 185 की संदृष्टि के देखने से ज्ञात होता है कि यवमध्य, हमने जो अभी देखी थी ना संदृष्टि, यवमध्य 1248 से दूसरा निषेक 1232 दो प्रक्षेप हीन है, उसमें से दो प्रक्षेप कम है, 16 कम है उसमें, क्योंकि वहां पर द्रव्य प्रक्षेप का प्रमाण 8 है, द्रव्य प्रक्षेप का प्रमाण यहाँ 8 है और यहाँ हम प्रदेशाग्र में बात बता रहे हैं ना। तीसरे निषेक का प्रदेशाग्र 1200 है जो यवमध्य से 6 प्रक्षेप, ये 6 गुणा 8 करना, 6 प्रक्षेप ने 48 कम है, प्रदेशाग्र होते 48 और द्रव्यार्थता के प्रक्षेप होते हैं 6। चौथे निषेक का प्रदेशाग्र 1152 है, चौथे ने हम यवमध्य से उल्टे ऊपर चले, यानी ऊपर यानी नीचे अभी कहना उसको, कम की ओर नीचे और फिर ऊपर यानी आगे तीसरी गुणहानि की तरफ जाएंगे तो हम ऊपर कहेंगे उसको। चौथे निषेक का प्रदेशाग्र 1152 है जो यवमध्य 1248 से 12 प्रक्षेप, 12 गुणा 8 96 कम है। इस प्रकार पहले दो प्रक्षेप कम किए, फिर 6, फिर 12, 20 प्रक्षेप आते हैं, टोटल 20 हो गए। उन्होंने डायरेक्ट आधे गच्छ का संकलन धन को डबल किया था, संख्या वही आ गई, वो उन्होंने निकाल के बताए। ये 20 प्रक्षेप ऊपर व नीचे दोनों स्थानों में हीन है, ये दूसरे द्वितीय गुणहानि जहां पर यवमध्य होता है, अभी समझाने के लिए दूसरी गुणहानि में आ गया है यवमध्य, परंतु जहां पर होगा उसकी बात है। अतः 20 द्विगुण प्रक्षेप हुए, खाली 20 प्रक्षेप नहीं कहना, 20 दुगुण प्रक्षेप, दुगुण प्रक्षेप कितने होते हैं 16, एक प्रक्षेप है 8 का, द्विगुण प्रक्षेप होते हैं 16 का और फिर उसको 20 से गुणा करो, तो इन 20 द्विगुण प्रक्षेपों को यानी 20 गुणा 8 गुणा 2 320 आते हैं। इसको ये हम अधिक की संख्या निकाल रहे थे, 1248 को हमने 8 गुणा किया था तो 9984 आए थे, परंतु इतने तो है ही नहीं है सबके, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों प्रदेश कम हो गए हैं, उसका प्रमाण अभी हमने कितना निकाला 320, तो 9,984 में से 320 कम करने पर 9,664 द्वितीय गुणहानि के प्रदेशाग्र का प्रमाण होता है। यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था। तो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एक घंटा तो काम में लग गया अपना। नहीं, समझने से है ना, हमें थोड़ा ही आगे बढ़ना है, दौड़ना है। कल ये बातें पढ़ी तो थी, पर इतनी क्लैरिटी नहीं हुए थे। अब आगे बढ़ते यहाँ पर, ये तो ब्रैकेट में हमें समझाने के लिए लाया। उन्होंने तो उतना ही वो संकलन के इतने दुगुने प्रक्षेप इतने कम करना इतना ही कहा था। अब कहते यहाँ पर, फिर ओरिजिनल में हम पढ़ रहे, ब्रैकेट तो समाप्त हुआ। धनराशि और ऋण राशि को लाकर, ये धनराशि जैसे हमने 9,984, और ऋण राशि किसको कहते हैं, जो माइनस करनी है उसको ऋण राशि करते, लाकर तथा ऋण में से धन कम करना, ओ ऋण में से धन को कम करके शेष का अवलंबन लेकर हानि का कथन करना चाहिए, वह भी संकलना संकलन सूत्र के अनुसार इतनी होती है। ये उन्होंने लिखा तो है संदृष्टि, जो मूल में लिखा था, यानी 8/2, यानी वो 4 का संकलन करना, जीरो आठ क्या लिखा है, ये 20 की सहनानी है ऐसा कहते वो। हाँ, 20 की सहनानी, दुगुने किए उन्होंने, 4 के संकलन को दुगुने किया है, 8/2 का संकलन धन निकाला और उसको दुगुना किया, इतना चाहते हो उतना ही बात। हम पढ़ेंगे इसको, यह 20 की सहनानी है, 20 के लिए ये चिन्ह दिया, 20 का एर क्या है, आधे गच्छ का दुगुना संकलन धन किया, वो 20 आए थे, वो 2 गुना करने के लिए 8/4 से गुना किया उन्होंने। इन प्रक्षेपों को यवमध्य के प्रमाण से करने पर इतने यवमध्य होते हैं, प्रक्षेपों को यवमध्य के प्रमाण से किया, तो यहां संदृष्टि में तो 8 और नीचे 54 लिखा है, परंतु यह 20/156 की सहनानी है, यह 8 वो गुणहानि का चिन्ह है उनका, उनकी सहनानी अपने ख्याल में नहीं आ रही, आगे पढ़ेंगे शायद आएगी। उक्त प्रमाण को अर्ध गुणहानि मात्र अर्ध गुणहानि प्रमाण यवमध्यों में से कम करने पर इतना होता है, ये 8/54 था उसको 8/27 किया, कम, ये ब्रैकेट में लिखते हैं द्वितीय गुणहानि के प्रदेशाग्र 156 × 4 624 में से 20 के 604 दैट इज इक्वल टू 13 × 40.6 द्विगुण प्रक्षेप, उसको द्विगुण प्रक्षेप से गुणा करना, ये कुछ समझ में नहीं आया, आगे पढ़ेंगे फिर भी। ये सारा ब्रैकेट में लिखा है उन्होंने यहां से आगे। हाँ, अब प्रथम गुणहानि के द्रव्य को लाने की विधि कहते हैं, ये तो जहां यवमध्य था उसकी गुणहानि लाई, अब नीचे की पहली गुणहानि ला रहे, यथा एक अधिक गुणहानि मात्र प्रक्षेपों को गुणहानि के वर्ग से गुणित करने पर स्तोक मान से प्रथम गुणहानि का द्रव्य होता है, यानी राउंड अबाउट उतना द्रव्य होता है. तो वो बता रहे प्रथम गुणहानि का प्रदेशाग्र इज इक्वल टू गुणहानि 8 से, उन्होंने लिखा ना एक अधिक गुणहानि मात्रा प्रक्षेपों को गुणहानि के वर्ग से गुणा करना. गुणहानि 8 से एक अधिक 9 को गुणहानि का वर्ग 8 गुणा 8 64 से गुणा करने पर 576 आता है और उतने प्रक्षेप लेना है. प्रक्षेप का प्रमाण पहले गुणहानि में 16 है, द्वितीय में 8 था. अब यहाँ एक प्रक्षेप का प्रमाण 16 है तो 576 गुणा 16 9216 आते हैं. अथवा 16 प्रक्षेप का प्रमाण है, 9 एक अधिक गुणहानि और फिर 8 गुणा 8 यानी गुणहानि का वर्ग तो 1152 गुणा 8 अर्थात प्रथम गुणहानि के अंतिम 8 प्रदेश यानी अंतिम. देखो पहले गुणहानि का अंतिम जो निषेक है वो कितना है, उसके प्रदेशों की संख्या कितनी है, 1152 मिला. तो 1152 को उन्होंने 8 गुना किया है परंतु क्या यही सही है, नहीं, क्योंकि वो अंतिम निषेक की वैल्यू 1152 है परंतु पहले वो पहले कम कम है ना, हमने 256 से लेकर ऊपर बढ़े थे हम, तो वो ऋण राशि लेनी कम करनी पड़ेगी. हाँ किंतु अन्य 7 निषेकों के प्रदेशाग्र अंतिम प्रदेशाग्र से प्रक्षेपहीन है, अतः प्रथम गुणहानि के प्रदेशाग्र से ये जो हमने टोटल 1152 गुणा 8 में कुछ प्रक्षेप बढ़े हुए हैं अब उसको कम करना पड़ेगा क्योंकि हमने टोटल द्रव्य कितना कितने प्रदेश मान लिए 1152 गुणा 8 परंतु इतने तो है नहीं है क्योंकि हमने पहले में देखे थे पहले में 256 ही है, दूसरे में 480 ही है तो जितने अधिक माने थे उसको कम करना पड़ेगा. अब यहाँ पर बढ़े हुए प्रक्षेपों का प्रमाण इतना होता है तो इतना होता है उसकी संदृष्टि उन्होंने लिख दी. अब उसी को समझाने के लिए फिर ब्रैकेट में डालते हैं. पत्र 186 के विशेषार्थ में देखो जो हमने पहले अभी जो दिख रहे हैं ना टेबल जो हम देख रहे हैं 186 पृष्ठ पर, ये ब्रैकेट में वो बता रहे हैं पृष्ठ संख्या 186 के विशेषार्थ में अभी देखते हुए अभी हम यहाँ पढ़ेंगे. प्रथम गुणहानि के द्विचरम, द्विचरम यानी अंत से दूसरा, अंतिम निषेक कितने का था 1152 तो द्विचरम निषेक का प्रदेशाग्र 1120 जो चरम निषेक के प्रदेशाग्र कितने हैं वहां पर 1152 से 2 प्रक्षेपहीन है यानी 32 उसमें कम है. त्रिचरम निषेक का प्रदेशाग्र 1056 है जो चरम निषेक के प्रदेशाग्र से 6 प्रक्षेपहीन है. देखो एक एक स्थान आगे जाएंगे ना तो उसके संकलन इतने प्रदेशाग्र प्रक्षेप लेना, द्वि प्रक्षेप एक साथ लेना. एक स्थान हम नीचे आ गए हैं तो एक का संकलन तो एक ही रहता है तो एक बार द्वि प्रक्षेप लेना यानी 16 × 32 कम करना. दो स्थान नीचे आए तो दो स्थान आए तो 1152 से कितने कम हुए, पहले वाला चय प्लस 2 चय यानी 3 चय कम हो गए तो 3 × 2 प्रक्षेप तो 6 प्रक्षेप आ गए. अब तीसरे स्थान पर नीचे आ गए तो वहां कितने हो जाएंगे, 3 का संकलन धन निकालना पड़ेगा, 6 हुआ, उसको द्वि प्रक्षेप से गुणा करना तो हाँ यानी 3 को 2 से करोगे तो 6 हो जाएगी, द्वि प्रक्षेप करना है ना उसमें 12 प्रक्षेप हो जाएंगे. ये बात ख्याल में, वही बात यहां बता रहे. 3-4 लाइन पढ़ी हमने 96 होते हैं हीन. इसी प्रकार अन्य 5 निषेकों के प्रदेशाग्र क्रम से, अभी वो 12 प्रक्षेप हीन है. 12 प्रक्षेप कैसे हीन है समझ में आया, 3 का संकलन धन 6 आया और उतने द्वीप प्रक्षेप लिए। अभी चार का संकलन धन कितना है? 10। उतने द्वीप प्रक्षेप लेंगे तो 20 प्रक्षेप हो जाएगा। पांच का संकलन धन 15 × 30, 30 प्रक्षेप हो जाएंगे। फिर छह का संकलन धन, वो अभी 15 आएगा ना, 15 में और 6 मिला दो तो 21 आएगा। 21 को दो गुना करना 42, तो 42 प्रक्षेप हो जाएंगे। 21 में और 7 मिला दो 28 हो जाए, 28 × 56 होते हैं। इतने प्रक्षेपहीन हैं। अब इनका जोड़ देना, कितने कितने प्रक्षेप है देखो। पहले 2 आए, फिर 6, 12, 20, 30, 42, 56, ये सब 168 प्रक्षेप है। इतने हमने ज़्यादा मान लिए थे 1152 में, अथवा एक कम गुणहानि प्रमाण का संकलना संकलन यानी दो बार संकलन होता है। यानी पहले मैं एक रखा, फिर 1+2 = 3, +1+2 + 3 6, +1+ ये जो अभी हमने ऊपर दे रखे ना, सभी के संकलन रखे हैं। देखो हमने ऊपर जो संख्या लिखी वो क्या है, हर एक के एक एक बढ़ते हुए संकलन को रखा है और उनकी फिर टोटल की है, तो उसको संकलना संकलन कहेंगे। तो 7 का संकलना संकलन निकाला, हम अपनी पद्धति से करेंगे ना। नहीं, खाली संकलन नहीं निकालना, संकलना संकलन। देखो संकलना संकलन यानी दो बार संकलन, तो दो बार संकलन करना है किसी चीज का, तो क्या कहते हैं, एक बार संकलन करना है तो 7 × 8 करते हैं और डिवाइडेड बाय 1 × 2 करते हैं। दो बार संकलन करना है तो 7 × 8 × 9 डिवाइडेड बाय 1 × 2 × 3। देखो 7 × 8 × 9 और उसके नीचे 1 × 2 × 3, तो 3 को 3 से भाग दिया तो 3 आए ऊपर, और 2 से वो 4 किया, 4 × 3 = 12 = 84। यही पर उन्होंने दिया, देखो ये सबकी टोटल उन्होंने ली थी। 7 का निकाले ना, ऊपर जो संख्या हमने देखी थी वो डबल डबल करके लिखी थी, द्वि प्रक्षेप लिखे थे ना वहां पर। अभी दो गुना बिना दो गुना करते हुए हर एक का संकलन अगर हम लिखेंगे, देखो एक का संकलन 1, 2 का संकलन 3, 3 का 6, 4 का 10, 5 का 15, 6 का 21 और 7 का 28, इसकी टोटल, इसको कहेंगे संकलना संकलन। कितनी है, 8 × 1 = 9, 5 × 14 = 20, 24। अच्छा ले, 2 × 2 = 7, 2 × 8 = 84। वही हमने निकाला 7 × 8 × 9 डिवाइडेड बाय 1 × 2 × 3। ये दो बार संकलन धन निकालने का तरीका है। अब इसको दो गुना करना हमको, क्योंकि दो दो प्रक्षेप लिए ना हर बार, तो पहले संकलना संकल निकाला और उसको दो गुना किया। देखो 84 होता है, इसका दूना 168 होता है, पहले भी उन्होंने यही निकाल के दिखाया था। इस प्रकार 168 बढ़े हुए प्रक्षेप है। ये हमने ज़्यादा मान लिए क्योंकि हमने 1152 को ही 8 गुना किया है, परंतु इतना तो है नहीं है। पूर्वोक्त 576 प्रक्षेपों में 168 प्रक्षेप घटाने से 408 प्रक्षेप, यानी टोटल कितने हुए प्रक्षेप, 16 का है, 408 बार 16 लेंगे तो 6528 प्रथम गुणहानि के प्रदेशों का प्रमाण होता है। यानी वो सारे जो टोटल प्रक्षेप है, 576 है टोटल प्रक्षेप, उसमें से उतने घटा दिए उन्होंने। अब ये तो ब्रैकेट यहाँ पूरा होता है। उन्होंने ऊपर क्या बताया था, पहले लाइन में बढ़े हुए प्रक्षेपों का प्रमाण इतना है, कितना होता है तो हमने वो 168 निकाला था। अब ब्रैकेट के बाद, क्योंकि वह ये बढ़े हुए प्रक्षेप कितने हैं, तो वह एक कम गुणहानी प्रमाण गच्छ के दूने संकलना संकलन प्रमाण है। एक कम गुणहानी 7 है, उसका संकलना संकलन 84 है और उसका दुगुणा 168 है। इसमें कुछ कम की गणना न करके पहले के द्रव्य में से घटा देने पर, पहले के हमने द्रव्य निकाला था ना 1152 मल्टीप्लाइड बाय 8 निकाला था, उसमें से घटा देने पर इतना होता है। पुनः इसे यवमध्य के प्रमाण से करने पर इतना होता है, ये घटा देने पर शेष कितना रहा, अभी हमने ऊपर निकाला था 6528 बराबर है ना, उसको यवमध्य के प्रमाण से करना है ना, उसको 1248 से भाग देना, तो इतना होता है। उन्होंने उन्हीं की भाषा में वो लिखा, ये संदृष्टि 8/27 और 16। पुनः इस प्रथम गुणहानी के द्रव्य में अर्ध गुणहानी का द्रव्य मिलाने पर इतना होता है। यवमध्य से ऊपर अर्ध गुणहानी का द्रव्य इतना होता है। यवमध्य के ऊपर भी है ना अर्ध गुणहानी, जैसे नीचे भी हमने देखी थी ऐसे ऊपर की, इसे अधस्थन द्रव्य में मिला देने पर इतना होता है। अब तृतीय गुणहानी के द्रव्य के लाने की विधि है। हाँ, वो ऐसे, वो क्योंकि वो उनकी संदृष्टि है, हमें अपनी भाषा में समझता है ना, इतना देखना है। उनकी संदृष्टियों में भी अलग अलग प्रतियों में अलग अलग पाठ है, इसलिए हम उसमें नहीं उलझे, क्योंकि हमें तो गणित समझने से मतलब है। अब तृतीय गुणहानी के द्रव्य के लाने की विधि है। यथा दो गुणहानी मात्र तृतीय गुणहानी के प्रक्षेपों को, यानी दो गुणहानी मात्र तृतीय गुणहानी के प्रक्षेप, यानी तृतीय गुणहानी के प्रक्षेप मल्टीप्लाइड बाय दो गुणहानी, एक अधिक दो गुणहानियों से गुणित गुणहानी से गुणित करने पर मोटे तौर पर तृतीय गुणहानी का द्रव्य होता है। ये ब्रैकेट में फिर समझाते हैं, देखो दो गुणहानी है 16, अभी तीसरे गुणहानी का प्रक्षेप कितना है, 4 है, दूसरे गुणहानी का 8 था, पहले गुणहानी का 16 था, आधा आधा आगे कम होता गया, तो दो गुणहानी 16 है, प्रक्षेप 4 है, उससे किसे से गुणा करना है, एक अधिक दो गुणहानी यानी 17 से, और गुणहानी, वो गुणन हानि हुआ, गुणहानि करना उसका। ने क्या किया हमने, दो गुणहानि उससे गुणा किया प्रक्षेप, तीसरी गुणहानि का प्रक्षेप जो 4 है, उससे एक अधिक दो गुणहानि 17 और गुणहानि 8 इससे गुणा किया, तो 8704 आ गए, अर्थात तृतीय गुणहानि प्रथम निषेक प्रदेशाग्रह 1088 गुणित गुणहानि 8, ये प्रमाण उसका आया। तृतीय गुणहानि को कितना बताया उन्होंने, उसका जो पहला निषेक है अपने, वो 184-186 पर देखेंगे हम, तृतीय गुणहानि की जो पहली वर्गणा नीचे लिखी है, देखो 1088, उसको हम 8 से गुणित करते हैं तो 8704 आते हैं। ये तो उन्होंने स्थूल रूप से मोटा या मोटे तौर पर बता दिया, परंतु क्या यह सही है? नहीं, क्योंकि प्रक्षेप तो कम होता गया है। द्रव्यार्थता का प्रक्षेप तो चार है, प्रदेशार्थ का तो अलग अलग होगा। प्रदेशार्थ में कैसे लेंगे हम? दूसरे निषेक में दो प्रक्षेप कम हो गए, तीसरे निषेक में छह प्रक्षेप कम हो गए, चौथे में 12 प्रक्षेप कम हो गए ना पहले की अपेक्षा से। नहीं समझे? देखो संकलन इतने कम होना है ना, चौथे का संकलन धन 4 आता है और उसको दुगुना प्रक्षेप कम करना है। देखो यहाँ नीचे 1288 है और चौथे में कितने हो गए? 1040 हो गए, 48 कम हुए ना, तो 12 कम हुए कि नहीं? 12 प्रक्षेप कम हुए। दुगुने प्रक्षेप लेना, जितना संकलन आता है ना उतने दुगुने प्रक्षेप लेना है। अभी हम मूल पृष्ठ पर आते, 195 पृष्ठ पर। देखो ये जहां ब्रैकेट पूर्ण होता है पांचवी लाइन में, 1288 गुना 8 वो 8704 आते हैं, यहां ब्रैकेट पूर्ण किया उन्होंने। यहां पर न्यून प्रक्षेपों का प्रमाण इतना है, वो न्यून प्रक्षेप कितने हैं? तो जैसे अभी हमने देखे थे 7 बार वो न्यून हो जाते होते चले जाएंगे। तो जैसे पहले एक घाटी गच्छ का उन्होंने दुगुना संकलना संकलन किया था, उतने प्रक्षेप कम हो जाएंगे। कहते पूर्वोक्त विधि के अनुसार न्यून प्रक्षेपों का प्रमाण 168 है, क्योंकि एक घाटी गच्छ 7 आया, गुणहानी में एक कम कर दो तो 7 आए, 7 बार कम होने वाले हैं, तो 7 का 2 बार संकलन हमने कितना, 2 बार तो 84 और उसको दुगुना करना था, 168 आ गए। और यहां पर प्रक्षेप का प्रमाण कितना है? 4 है, तो 168 को 4 से गुणा करना पड़ेगा और उतने कम करना है। इन्हें पहले के द्रव्य में से घटा देने पर इतना होता है और इसे यवमध्य के प्रमाण से करने पर इतना होता है। अब जो संख्या आई उसको यवमध्य से भाग देंगे तो उसका प्रमाण यह आ जाएगा। अब चतुर्थ गुणहानि के द्रव्य के लाने की विधि कहते हैं, यथा यवमध्य के प्रक्षेप के चतुर्थ भाग को। अभी यवमध्य का प्रक्षेप कितना था? 8 था, आगे की गुणहानि में उसका आधा हुआ था, अब उसके के आगे में उसका चतुर्थ भाग होगा, तो यवमध्य के प्रक्षेप से चतुर्थ भाग हो जाएगा। यानी यहां का प्रक्षेप है 2, भाग को 6 गुणी गुणहानि के घन से गुणित करने पर, ऊपर तो हमने 2 गुणहानि मात्र प्रक्षेपों को वगैरह वगैरह लिया था, अब चतुर्थ गुणहानि के लिए क्या उनका सूत्र क्या है? 6 गुणी गुणहानि के घन से गुणित करने पर मोटे तौर से चौथी गुणहानि का सब द्रव्य होता है। यही बताया उन्होंने, गुणहानि का घन के लिए 8 8 8 3 बार लिया और वो 6 गुणा लिखा है और यहाँ का प्रक्षेप का चतुर्थ भाग लिया उन्होंने। इसको फिर समझाते हैं। यवमध्य का प्रक्षेप 8, उसका चतुर्थ भाग 2, उसको 6 गुणहानि का घन, गुणहानि का घन है 8 गुना 8 गुना 8 गुना 6 उससे गुणा करना, यानी 2 से उस सबकी टोटल को गुणा करना है, तो 6144 आ गए। ये मोटे रूप से चतुर्थ गुणहानि का प्रदेशाग्रह है। अंक संदृष्टि में इसका प्रमाण 5166 है, तो 6144 में से 5616 166 और 616 क्या सही है? ऊपर देखना, 64 गुना ऊपर का गणित देखेंगे ना, 64 गुना 128 को 6 से गुना करना। चले, 4 साइड में 12, 4 16, 7 साल है, 1 9 4 10। नहीं नहीं, 88 64 गुना 8 है, 8 का घन है। अठेटी 64 और 64 को 8 से गुना करना, 512 आता है ना, कितना आता है? 512 होता है 8 का घन। हाँ, अभी 512 को साइदुनी 12 से गुना करना, 12 दुनी 24, अच्छा ले 2, 12 के 12 दो 14, अच्छा ले 12 पंचे 60 61, 6144 वो बराबर है। नहीं, मगर वो उसमें से माइनस करना है ना, देखो 6144 में से 5166 निकालना है, फाइव सिक्स वन सिक्स है क्या, 5166 है? ऐसा करो ना, 528 माइनस करो उसमें से, फाइव सिक्स वन सिक्स है। हाँ, ऊपर 5166 क्यों लिखा है? छप्पन 16 बराबर है, अपने अंक संदृष्टि में कितनी है उसकी टोटल, चतुर्थ गुणानी की टोटल करो भाई, 186 पृष्ठ पर, 12 आणि 8, 20 आणि 7, 26, 6, 6 2, 7, 9, 2, 11 आणि 11, 9, 20 आणि 7, 26, 7, 33 आणि 8, 41, 44, 4, 9, 6, 15 आणि 6, 21 आणि 6, 27 आणि 7, 34 आणि 7, 41 आणि 7, 16 आते है ना, 5616 है, 5166 के बदले 5616 चाहिए। चलो इसको कल ही देखेंगे। ये चतुर्थ गुणानी की बात फिर हम पढ़ेंगे कल। इतना डरावना नहीं था ना, अभी कल समाप्त होगा गणित। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढो। अश्विन भाई, अश्विन भाई बोलो।